ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद्भागवत के चौथे स्कंध अध्याय 27, और जिसका नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवे का धावा और कालकन्न का चित्र। श्लोक नंबर दूसरा। स राजा महिषीम राजंसु स्नातानाम, स राजा महिषीम राजंसु स्नातानाम रुचिरानाम कृत्स्वस्ति अयनाम तृप्ताम अभिनंदत उपागताम। स राजा महिषीम राजन सुसनाताम रुचिर आननाम कृत्स्वस्ति अयनाम तृप्ताम अभिनंदत उपागताम। स राजा महिषीम राजन सुसनाताम रुचिर अननाम कृत्स्वस्ति अयनाम तृप्ताम अभिनंदत उपागताम। महिषीम राजन सुस्नाताम रुचिरानाम राजा महिषीम राजन कृत्स्वस्ति अयनाम तृप्ताम अभिनंदत उपागताम। स राजा महिषीम राजन सुस्नाताम रुचिरानाम नाम कृता नंद उपागता। स राजा महिषीम राजन सुस्नाताम रुचिरानाम नाम कृता नंद उपागता। स उस राजा राजन ने महिषीम रानी को राजन हे राजा सुसनाताम अच्छी तरह नहाई हुई रुचिर अन्नाम आकर्षक मुख वाली कृत स्वस्ति ऐनाम शुभ वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित तृप्ताम तृप्त अभिनंदत स्वागत किया उपागताम पास जाकर। ट्रांसलेशन और तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को सुसज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। अतः अत्यंत सुसज्जित तथा आकर्षक मुख वाली को देखकर राजा ने उसका तन्मयता अभिनंदन किया। तात्पर्य, स्त्री सामान्यतः अच्छे वस्त्र धारण करती है और सुंदर आभूषण पहनती है। कभी कभी वह बालों में फूल भी धारण करती है। स्त्रियां प्राय अपने को संध्या समय सुसज्जित करती हैं, क्योंकि उसी समय उनके पति काम से घर वापिस आते हैं। यह तो स्त्री का कर्तव्य है कि जब उसका पति काम से वापिस आए वह अपने आप को सुंदर ढंग से सजाए, जिससे उसका पति उसे देखकर आकृष्ट हो और संतुष्ट रहे। दूसरे शब्दों में स्त्री समस्त सद्बुद्धि को प्रेरणा देती है। अपनी पत्नी को सुसज्जित देखकर मनुष्य अपने परिवार के विषय में गंभीरता से विचार कर सकता है। जब मनुष्य पारिवारिक मामलों में अत्यधिक उलझता है तो वह पारिवारिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता। अतः स्त्री को प्रेरणावद प्रेरणाप्रद समझा जाता है और उसे पति की बुद्धि को सुचारू रखना चाहिए, जिससे दोनों मिलकर पारिवारिक मामलों को ठीक से चला सके। ओम अज्ञान तिवरंदस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम दाति सपदांतिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति विदान स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्शेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्ना प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं च नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं दीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतलेषु गिरिराज स्वामिनि नाम। तो यहां पर नारद जी बतला रहे हैं कि कैसे पुरंजन अपने, जब आप अध्याय शुरू हुआ है और इस अध्याय में कैसे वो अपनी पत्नी के साथ आसक्त हो जाता है, और इस पर्टिकुलर श्लोक में जो बतलाया गया कि कैसे उसकी पत्नी सज धज कर उसके पास आती है। ये बहुत जरूरी है कि आवश्यक है कि जो घर का माहौल अच्छा हो, शांति प्रिय हो। जो हमारा धर्म चार वर्ण और चार आश्रम, जो चार वर्ण हैं उनसे भौतिक प्रगति मिलती है। संसार में रहना है, कई बार कहते हैं कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला ले ले कंठी माला। पेट भूखा है, मन संतुष्ट नहीं है, अलग अलग विचार है मन में, तो भक्ति के लिए ये सब विघ्न है। अब घर में शांति हो तो अच्छी तरह से भजन हो सकता है। मन अशांत है तो भजन करने में बहुत कठिनाई होगी। चाणक्य पंडित कहते, दुष्ट भार्य षड मित्रम प्रत्यक्ष चोत्र दायक सर्पेच ग्रह वासो मृत्यु एवं न संशय। चाणक्य पंडित कहते हैं कि दुष्ट भार्या, जिसकी भार्या जिसकी पत्नी दुष्ट है, कड़वा वचन बोलती है, षड मित्रम भार्या दुष्ट है और मित्र कपटी है, कोई मित्र है वो कपटी है। वृत्तश्चोत्रदायक, और नौकर आपके सामने जवाब देता है, आप नौकर को रखा है, नौकर घर का काम करता है, आपका सहयोग देता है, कभी आपको सामने आपके मुंह पर उत्तर देना लग जाए, सुस्पर्श्य ग्रहम, तो ये देखो सुस्पर्श्य ग्रहम वासो, कि घर के अंदर सांप रह रहा है। भार्या दुष्ट है, मित्र कपटी है, नौकर आपका आदेश नहीं मानता, तो समझो कि आपके घर में सर्प रह रहा है। और उसका रिजल्ट क्या होगा, चाणक्य पंडित कहते हैं, नुत्तेवना संशय, उसमें कोई संशय नहीं है कि उस व्यक्ति की मृत्यु अवश्य आने वाली है, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी उसकी। फिर कहते हैं वो माता यस्य ग्रह नास्ति, जिस घर के अंदर मां नहीं है, एक मां ऐसी होती कि अपने बच्चे को वो हमेशा सोचती है, बड़े बच्चा की इतना भी बड़ा हो जाए, बच्चे के आगे भी बच्चे हो जाए, तो भी मां अपने बच्चे के विषय में सोचती है। बाप का अपना कर्तव्य है, बाप दिन रात बिजनेस में लगा है या बाहर रहता है, एक मां होती है घर की सब व्यवस्था देखती है। और चाणक्य पंडित कहते कि माता यस्य गृह नास्ति, जिस घर में मां नहीं है देखभाल करने के लिए, भार्या च अप्रिय वादिनी, जो भार्या है जो पत्नी है वो कड़वे वचन बोलती है, अरण्यतेन गंतव्यो, उस व्यक्ति को उसी समय इमीडिएटली अरण्यतेव्यो, उसको अरण्यम तेन गंतव्यो, उसको जंगल में चले जाना चाहिए। माता है नहीं, पत्नी कड़वे वचन बोलती है, अरे भैया ये घर को छोड़कर तुम जंगल में चले जाओ, क्यों, यथा अरण्यम तथा ग्रहम, अरे घर भी तो जंगल की तरह ही है। तो ये एक आवश्यक है। मेरे को पता है किसी ने बताया कि किसी का पति थोड़ा सा रंग सांवला होगा तो पत्नी बहुत सुंदर होगी, वो पत्नी बोलती जा तो तुम मेरे आगे चला करो, जा तो मेरे पीछे चला करो। पत्नी क्या बोलती है, जा तो मेरे आगे चल या तो मेरे पीछे चल, क्योंकि उसको सुंदरता का बहुत घमंड है। अब ये चार वर्ण और चार आश्रम इतने ग्रह के लिए, गृहस्थी के लिए शांति प्रिय हो, ताकि जो व्यक्ति है अपना धर्म ही अपवर्गस्य, अपने धर्म को हम याजन कर सके, ये बहुत एक आवश्यक है। पत्नी बहुत, जो स्त्री है उसके बहुत कर्तव्य होते हैं। कभी आप देखेंगे कि इंग्लिश में कहते हैं कि वुमेन कैन डू मल्टीटास्क, उसका अर्थ है कि जो एक औरत है, जो स्त्री है, वो कितने ही काम एक बार में कर सकती है, और जो पुरुष है वो एक काम एक ही करेगा, एक स्वभाव है। पुरुष का काम होगा कि चलो भी धन कमाया और ले आया, घर गृहस्थी चला दी। स्त्री के लिए देखा जाए तो स्त्री के लिए उसको पति भी देखना है, पत्नी भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, खाना पाना भी देखना है। कई बार मैं सोचता हूं, मैं कई बार अपनी पत्नी को भी ये बोला, बहुत कई बार जब मैं यहां पर वृंदावन में होता हूं तो मैं देखता हूं कि कितना बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा बोझ नहीं, एक स्त्री के लिए कितना ज्यादा काम है कि उसको घर के लिए, खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, परिवार के लिए उसको बनाना पड़ता है, क्यों कुछ रोटी पानी बनाए, और फिर भक्त होने के बाद तो फिर देखिए घर की रोटी पानी बनाए, बच्चों के पीछे। यहां पर तो चलो आप वृंदावन में हैं तो कुछ आनंद अलग है वृंदावन का, जो वृंदावन से बाहर रहते हैं उसको सास भी देखना पड़े, ससुर भी देखना पड़े, मां बाप भी देखने पड़े, एक बहुत बड़ा काम है। उसका मगर जब भक्ति में आ जाता है तो कभी हम ये वस्तु में फंस जाए। कई बार आजकल कई बार देखते हैं, कई बार कई मैंने शायद पिछले लेक्चर में बोला था, कई बार फेमिनिज्म के अंदर आ जाता है, वुमनहुड के अंदर आ जाता है व्यक्ति कि स्त्री इक्वल है। अरे भाई इक्वल नहीं, पुरुष के जो स्त्री है वो उसके ऊपर है, पुरुष से ऊपर है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सिखाया माता जी कहना, भले आयु में छोटी भी हो माता जी कहकर संबोधित किया जाए स्त्री को। चैतन्य महाप्रभु ने कई बार, ये ऐसा है कि जैसे एक बहुत, आप उसको एग्जांपल दीजिए कि इतना थोड़ा सा अंतर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपी भत्पत कमलो दास दास दासानुदास, जब भी भक्ति में आ जाता है तो ये एक शरीर जो है, ये शरीर है, आज पुरुष का शरीर है कल को स्त्री का शरीर होगा, ये शरीर संबंधित है। आत्मा ना तो पुरुष है और ना स्त्री है, एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब प्रकृति है। प्रभुपाद जी ने बताया कि जब यहां पर मीरा भाई आई थी तो जीव गोस्वामी जी को उसने बोला कि उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु के पास जीव गोस्वामी हैं, तो मिलने आई तो जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं स्त्रियों को नहीं मिलता। तो उन्होंने संदेश भेजा कि ओ मैंने तो सोचा था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। तो जब उन्होंने ये संदेश भेजा मीरा भाई ने, तो प्रभुपाद जी ने स्वयं बताया है, मैंने सुना है उसका लेक्चर में प्रभुपाद ने बोला, तो जीव गोस्वामी ने अपनी गलती को स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया और फिर मिले वो। अब जो आत्मा है वो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण ही एक पुरुष है, आत्मा तो प्रकृति है। परंतु जब हमको जैसा भी शरीर मिले, प्रभुपाद जब अमेरिका गए, अमेरिका जाने से पहले भी जब प्रभुपाद ने सब अपनी पुस्तकें लिखी, उनमें से पहली एक पहला सबसे बड़ा लिखा कि आई एम नॉट दिस बॉडी, हम यह शरीर नहीं है। शायद पिछले यहां पर लेक्चर में या मैं इंग्लिश में या हिंदी में मैंने बोला था कहीं कि कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, आपने सुना होगा ना कि हमारे शरीर में आत्मा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में आत्मा नहीं है, हम आत्मा हैं, आत्मा के पास ये शरीर है, हम है ही आत्मा, आत्मा के पास शरीर है। किसी का जन्म पंजाब में हुआ तो उसके पास पंजाबी शरीर हो गया, किसी के पास गुजरात में जन्म हुआ तो उसका शरीर गुजराती हो गया। अब ये बार पुरुष का शरीर मिला, किसी को स्त्री का शरीर मिला, अब ये ब्राह्मण का शरीर मिला या शूद्र का शरीर मिला या वैश्य का शरीर मिला, ये तो अलग अलग शरीर हैं। शरीर से स्त्री नहीं हो जाता या शरीर से पुरुष नहीं हो जाता, शरीर से ब्राह्मण नहीं हो जाता। कई बार लोग बोलते हैं कि जो ब्राह्मण के घर है, ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो ही ब्राह्मण होंगे, नहीं तो ब्राह्मण नहीं हो सकते, होता है, सुना है ना आपने, कई बार वो बोलते हैं। ये हरे कृष्ण वाले अलग हैं, लोगों को ब्राह्मण बनाते जा रहे हैं। भक्ति सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होगा व्यक्ति, ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा गीता के अंदर चतुर्वर्ण मैं सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण से ब्राह्मण होगा, गुण से उसके वर्ण होंगे, गुण से उसके आश्रम होंगे। जन्म से ब्राह्मण हो जाता व्यक्ति तो भक्तिदान्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि जन्म से ब्राह्मण हो जाता है तो ब्राह्मण के शरीर में से कितनी कीटाणु निकलते हैं, जर्म्स पैदा होते हैं हर रोज, तो इसका मतलब वो जर्म भी ब्राह्मण होने चाहिए। ब्राह्मण के शरीर से ब्राह्मण निकला तो ब्राह्मण के शरीर से जर्म्स भी निकलते तो वो ब्राह्मण होना चाहिए। कभी ब्राह्मण का शरीर ब्राह्मण है तो भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि जब वो शरीर जलाया जाएगा, कभी वो माने कि ये मेरा शरीर ब्राह्मण का शरीर है और शरीर जला दिया जाए, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं तुम्हारा शरीर ब्राह्मण है तो जलाने समय व्यक्ति को जलाने वाले को ब्राह्मण हत्या लगनी चाहिए। आप बात समझते हैं? शरीर से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, शरीर से कोई क्षत्रिय नहीं बनता, ये तो एक शरीर है, जैसा जैसा शरीर है वैसे वैसे हिसाब से रहना पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद जी को दो ब्राह्मण मिलने आए, जब दो ब्राह्मण मिलने आए तो उनमें से एक प्रभुपाद जी ने पूछा ब्राह्मण को, भई भगवान कौन है, हु इज गॉड? तो एक व्यक्ति बोलता है कि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट मैटर है स्वामी जी। एक ब्राह्मण बोलता प्रभुपाद जी को, अरे स्वामी जी ये बहुत कठिन सब्जेक्ट मैटर है, भगवान कौन है, आत्मा के विषय में बात करिए। तो प्रभुपाद ने तभी दूसरे उसके मित्र को पूछा, भाई आपके मित्र को तो नहीं पता, आप बताइए। तो वो ब्राह्मण क्या बोलता है प्रभुपाद जी को, अरे इधर उधर का बोल के कुछ ये है, वो निराकार है, वो साकार है, वो आकार है, वो ये है, वो है, ऐसी अपनी अपनी ऐसा कितनी बड़ी करके इधर उधर की बातें करके, अब वो सही सही जवाब नहीं दे सके कि भगवान कौन है, क्योंकि इंडिया में सब भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी हमारी कोई बच्ची इस्कॉन में पैदा हुई, मेरे को नाम नहीं उसका पता, तो छोटी सी बच्ची, हमारे बच्चे हैं भक्तों के लोगों के, तो वहां पर एक छोटा सा बच्ची खड़ी थी, प्रभुपाद ने उसको बुलाया, इधर आओ ब्राह्मणों के सामने। प्रभुपाद ने उसको एक थोड़ा सा एक वो मिठाई प्रसाद थी, प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं प्रसाद दिया, तो वो बहुत खुश हो गए बच्ची। और प्रभुपाद जी उसको पूछते हैं, हु इज गॉड? शी सेड कृष्णा। प्रभुपाद जी उसको बच्ची को पूछते हैं कि भगवान कौन है, वो बोलती कृष्णा। तो प्रभुपाद ने दूसरी प्रसाद की मिठाई उठाई फिर उसको देते हैं बच्ची को, उसी बच्ची को। अब उलट तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभुपाद उसको, बच्ची को, उस बच्ची को पूछते हैं, उन ब्राह्मणों के सामने ऐसा मिठाई दिया वो बहुत खुश हो गई। तो प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं, तो कृष्ण कौन है, हु इज कृष्ण? वो बोलती गॉड। तो दोनों तरफ से बच्ची को पूछा कि भगवान को, बोलती कृष्ण, और छोटी सी बच्ची को पूछ रहे हैं प्रभुपाद कि कृष्ण कौन है, तो बोलती भगवान। तो वहां पर इस एपिसोड में, इस बात में, इस जो जो जब ये बात हुई ब्राह्मणों को, तो इस एक प्रभुपाद जी की लीला में एक बात स्थापित हो गई कि जो इस्कॉन की एक छोटे से छोटा बच्चा है उसको भी पता है कि भगवान कौन है, जो बड़े बड़े ब्राह्मण हैं उनको यह भी नहीं पता अभी भगवान कौन है। तो देखिए ये कितना भाग्य है हमारा कि हमको वो चीज प्राप्त हुई है, गोलोकेरा प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन। क्या आप ये छोटी सी वस्तु है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, अरे ये मंत्र जप करते हैं आज तो बहुत सुविधा है। और कितना भाग्य है हम सब का कि वृंदावन का वास मिलता है, वृंदावन का वास मिला। वृंदावन का वास कोई साधारण वास नहीं है। इस वृंदावन में जहां तक लक्ष्मी जी नहीं आ सकती, उस वृंदावन में हमको वास मिल रहा है। देखिए क्या भाग्य है, जितने भी बैठे हैं हम, हमारा सबका भाग्य है। अभी किसी जन्माष्टमी के दिन मथुरा गया तो वहां पर एक टीवी स्टेशन वाले वहां से प्रसारण कर रहे थे डायरेक्ट, तो उन्होंने बुलाया। तो अब वहां पर प्रसारण में जब मैं गया वहां पर, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा मेरे को छोटा सा, इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो ये साधारण प्रश्न है जो साधारण आप भारत में वो बहुत पूछते हैं, जी ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। तो मैं मन में हंसा, मैं सोचा देखो भाई क्या अलग स्टोरी है, ये तो बहुत लंबी आप सबको तो पता है। तो मैंने उनको एक बात बोली, जी वृंदावन में एक बात है। बोले वो क्या? आपके जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो तीनों यहां पर वृंदावन में सेवा करते हैं। वो कैसे? अरे तीनों तो पर्वत बन गए ना हमारे यहां पर। आपका विष्णु जी कृष्ण है, ये तो हमारे गिरिराज गोवर्धन है। अब ब्रह्मा जी हैं यहां पर, क्या नाम है, नंदगांव में, नहीं हाँ बरसाना में, बरसाना में, और उधर किधर, नंदगांव, नंदगांव में शिव जी बैठ गए। अरे आपके तीनों ब्रह्मा विष्णु में ही तो यहां पर सेवा लगे हुए हैं। हमारे कन्हैया की सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए वो यहां पर बैठे हुए हैं तीनों। और जिस लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं चलता, कोई संस्था नहीं चलती, कोई घर नहीं चलता, कोई परिवार नहीं चलता, वो लक्ष्मी जी भी यहां पर नहीं आ सकती। यहां तो केवल कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का राज है, केवल गोपियों का, गोपों का, उनका राज है। कई बार लोग कई बार ये एक और प्रश्न पूछते हैं, आपके कृष्ण जो हैं वो ऐश्वर्य समग्र से वीर जशस्य ज्ञान वैराग्यम क्षण विधि इति अंगणम। आपके कृष्ण में पराशर मुनि जी ने जो भगवान की जो डेफिनेशन दी है, ऐश्वर्य समग्र से वीर जशस्य, कि समस्त जिनों में उस व्यक्ति, वो भगवान कृष्ण है जिनमें समस्त पावर है, उनसे ऊपर कोई और शक्तिशाली नहीं है, उनसे ऊपर किसी के पास धन नहीं है, सबसे धनवान वो हैं, सबसे रूपवान वो हैं, सबसे फेमस, फेम में क्या बोलते हैं उसको, हा? कैसे, हा कीर्ति, ज्ञान वैराग सब कुछ उनमें है। अरे इतने बड़े वो बैकुंठ में बैठती हैं नारायण। अरे मैं कृष्ण वृंदावन में ही क्यों, गोप गोपालों के साथ दूध पीना, माखन खाना, या ये गैया के साथ गौचारण करना, ऐसा क्यों है? तो कई बार उनको वैष्णव लोग एक उदाहरण देते हैं, अभी जैसे कोई बहुत अमीर आदमी है, उसके पास बहुत बड़े 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 महल हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब कुछ है। कई बार वो क्या करता है, वो बोलता है थोड़ा सा मैं तंग आ गया हूं सब चीजों से, सब वस्तुओं से तंग हूं, मैं थोड़ा सा फार्म हाउस में जाके रहता हूं। कई बार लोग, अमीर लोग बनाते हैं ना छोटा सा फार्म हाउस, फार्म हाउस में जाके रहता हूं थोड़ा सा, एक छोटे से कमरे में, वो उधर आनंद रहेगा। जहां कई बार कोई बड़े बड़े पकवान खाता है रोज, आप जाइए कभी हमारे इस्कॉन जुहू में, देखेंगे ना आप, वहां का गोविंदा बहुत बढ़िया है ना, आप जाएंगे तो इतना वो काफी रिच होता है। अरे इतना 25-30 आइटम होती हैं, तो आदमी कभी जाते हैं तो कभी बैठे भक्त के साथ बुलाए खाए, दो बार प्रभु अब नहीं खा रहेगा, नहीं नहीं बहुत हो गया, तो क्या करें, अरे थोड़ी सी बस मूंगी की दाल है ना, और चपाती और मूंग की दाल, बस साधारण सिंपल सा, उसमें आनंद अलग लगता है। तो हमारे कृष्ण है वो वृंदावन में जो आनंद है, उनका जो आनंद है वो खान पान में, वैभव में नहीं है, क्योंकि वृंदावन में केवल भक्त हैं, और वृंदावन में जितने भी गोप हैं, गोपियां हैं, गोलोक धाम में जो गैया है, सब कृष्ण 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 करती हैं। इसीलिए तो कृष्ण ने वहां पर वृंदावन के अंदर, इसीलिए तो कृष्ण ने गैया चुरवाई अपने ब्रह्मा जी से, नहीं तो क्या जरूरत थी उनको गैया चुरवाने की। जितनी भी गोपियां थी वो सोचती थी कि कृष्ण केवल यशोदा का दूध पीता है, मेरा तो दूध ही नहीं पीता, काश हम भी, हमारे पास भी कृष्ण मेरा बेटा होता तो मेरा 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 स्तन पान करता, मेरा दूध पीता रोज। और गैया भी यही सोचे, नंद बाबा की 9 लाख गैया, 9 लाख गैया में से सबसे बढ़िया गैया जो हो 1008 गैया, उसका दूध दोहकर
यशोदा मैया 108 गैया को दूध पिलाए और 108 गैया का दूध दोहकर गई मैया 8 गैया को दूध पिलाए और 8 गैया का दूध दोहकर मैया 1 गैया को दूध पिलाए। और जब 1 मैया को दूध पिलाए 1 गैया को, उसका दूध अपने कन्हैया के लिए बनाए और फिर उसको रिड़के और फिर अपने कृष्ण को वो खिलाए। तो 9 लाख गैया सोचे, ओहो कृष्ण को पिलाते तो मैं भी तो पिलाऊं। और सबके लिए कृष्ण ने ऐसी लीला रची, भाई कोई बात नहीं सबकी इच्छा पूर्ण कर लो। सबकी इच्छा पूर्ण की, कैसे की? गैया चुरवा दी, गोपाल बाल चुरवा दिए, गैया चुरवा दी, सबके घर में जाकर विराजमान हो गए, सबका स्तनपान किया, सबका दूध पिया। और वो वृंदावन में यहां पर जहां पर इतने हजारों सालों से भक्त आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए, भूगर्भ गोस्वामी आए, लोकनाथ गोस्वामी उन्होंने स्थापित किया, नूतन दास ठाकुर ने, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव ग्वाल भट्टदास रघुनाथ, श्री बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने सबने कितनी कितना कष्ट उठाया है। अरे पुस्तकें लिखने किसके लिए? आजकल तो लोग पुस्तकें लिखते हैं, क्या करते हैं भैया, थोड़ा सा मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट के ऊपर एक 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 वो एक कंपनी है, उसमें आपका नंबर बढ़ जाता है, किसी की पुस्तक बिके तो, उसका नाम मेरे को याद भूल गया, अमेजोन में कुछ ऐसे बेचते हैं वो। तो आजकल तो लोग अपनी पुस्तकें बनाते हैं, पुस्तकें छापते हैं, भले कुछ भी हो, धार्मिक पुस्तकें भी हो, तो केवल क्या है, या तो धन कमाना है और यहां अपनी कीर्ति बढ़ानी है कि ये पुस्तक मैंने लिखी है, अपना नाम ले लिया। मगर हमारे गोस्वामियों ने जो हमारे गौड़िया वैष्णव में जो भक्तों ने जो कष्ट सहा है, ये केवल इस मात्र के लिए, प्रभुपाद जी ने ये कष्ट सहा केवल इस बात के लिए कि जीव का जो उद्धार हो जाए केवल इन पुस्तकों के साथ पढ़कर, भक्तों के संग के साथ, अकेला नहीं हो सकता। उसमें शंकर जी बोलते हैं उत्पादे विकल्पते, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधीन विना अकांत की हरेर भक्ति उत्पादे विकल्पते। कभी इसके बगैर भक्ति करें, श्रुति स्मृति पुराण आदि, इनके पुराणों के साथ श्रुति स्मृति इन सब के, इनको कंसल्ट नहीं करें और भक्ति करें तो वह क्या लिखा है, उत्पादे विकल्पते। जैसे बंदर होता है ना, बंदर क्या करता है, बंदर उछल पछल करता है, सब तोड़ जाता है, जिस डाली पे ऊपर बैठता है उस डाली को तोड़ता है, तो उसमें उसका उत्पात होता है। अब वो जगह जहां पर वृंदावन में हजारों सालों से वृंदावन में भक्त आते हैं, किस लिए आते हैं, केवल कृष्ण को आभास करने के लिए। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी आप ये बताइए कि मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, हमारे घर में भी तो मंदिर है और भारत में हर एक हिंदू के घर में मंदिर है। वो बोला मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, हमारे घर में तो भी मंदिर है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत है, आपके घर में भी तो दवाई खा सकते हो, घर में भी दवाई ले सकते हो। प्रभुपाद ने कहा परंतु आप अस्पताल में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो केवल इसलिए कि वहां पर व्यवस्था ज्यादा है, दवाई की व्यवस्था वहां पर अच्छी है। तो इस तरह जो मंदिर है वहां पर व्यवस्था अच्छी होती है, भगवान की भक्ति करने का वातावरण अनुकूल होता है, अनुकूल वातावरण है वहां पर भक्त को जाए। तो भोपाल ने कहा है कि जब भी आप जाएं किसी धार्मिक स्थान पर, हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, हमारे गौड़िया वैष्णव मायापुर या जगन्नाथपुरी, तो प्रभुपाद ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जब आप जाए नहाने मात्र से शुद्धि तो होगी बहुत कम, शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुननी चाहिए, कथावाचक से नहीं। प्रभुपाद ने कहा है हजारों कथावाचक देखिए, आप कथा होती है आज आप जाइए वृंदावन में आप देखें कितनी कथाएं चल रही है, चलती है ना कथा। अब क्या होता है कथा में, वो व्यक्ति आता है पहले तो वो आकर आधा घंटा तो श्लोकों में निकाल देता है, वो ओम अपवित्राय पवित्रा सबस्ताम को ये समृद्ध पुंद्रिकाक्षम स्वभा बंतु श्री शिव विष्णु श्री विष्णु नारायण हम नमस्कृत नमचरण धर्म, वो बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोलता जाएगा श्लोक, आधा घंटा बोलने के बाद थोड़ा सा पूजा करवाएगा, फिर जो जजमान होंगे उनको आधा घंटा हार पहनाएगा, ये जजमान जी ने कथा अरेंज की है इनको बुलाइए हार पहनाइए, उनके हार पहनाएंगे, एक घंटा उसमें निकल गया। फिर थोड़ा सा गाना बजाना हो जाएगा, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा तेरो मदन मकवाल, गाना गाते गाते आधा घंटा वो निकल गया, अब कृष्ण की कथा शुरू हुई, भागवत 7 दिन में खत्म हो जाती कर देते हैं वो। अरे 335 अध्याय है इसके अंदर, एक अध्याय के ऊपर आप एक घंटा भी बोलिए, ये तो हम एक श्लोक के ऊपर बोल रहे हैं, एक अध्याय के ऊपर एक घंटा बोलिए, कोई गाना बजाना नहीं, कोई पाठ पूजा नहीं, केवल मात्र एक अध्याय के ऊपर कितने कितने श्लोक हैं आप उसके ऊपर पूरा पूरा दिन बोल सकती हैं, एक अध्याय के ऊपर एक घंटा बोलिए तो हमको 335 घंटे चाहिए। आप सोचिए सात घंटे में 7 दिन में एक घंटा बोला व्यक्ति, आधा घंटा बोला, 4 घंटे में सारी भागवत कैसे कह जाएगा वो। प्रभुपाद ने कहा है कि जैसे उन्होंने एक पद्म पुराण से शंकर जी का उल्लेख करते हैं, वैष्णव खोद गन्नम पूतम हरि कथा शरणा कर तो सर्पोच्छिष्टम यथा व्या, जैसे दूध वो अमृत की तरह होता है, दूध को कभी सर्प मुख लगा दे तो क्या होगा, एकदम विषैला हो जाएगा, दिखेगा तो दूध मगर वो दूध नहीं है केवल विष है। तो ऐसी कथाएं जो चलती हैं केवल धन के लिए, अभी कई बार मैं हंसता हूं, मेरे को हंसी आती है जब कभी मैं देखता हूं या सुनता हूं ऐसी बात, 6-6, 7-7 लाख रुपया लगाकर वो जो वक्ता है वो बैठता है, आयोजन होता है कथा का, भागवत का आयोजन होता है, कितनी कॉस्ट लगी भाई, महाराज भी वो बोल के बोलते हैं जी कथा करने आएंगे 2 लाख रुपया लेंगे, अच्छा ठीक है महाराज, उसका आयोजन करेंगे कितना लगा 5 लाख, टोटल कितना लग गया 7 लाख, अभी 7 लाख लगाने के बाद वो बोलेगा 2 लाख ले लिया, लोगों को बोलेंगे आप धन से मोह मत कीजिए, केवल ये बोलने के लिए कि धन माया है धन को टच मत कीजिए, खुद 2 लाख रुपया ले रहे, ऐसी कथाओं से नहीं होगा। और यहां पर देखिए आप कितने भक्त लोग अपना घर बार छोड़कर, जब से इस्कॉन प्रभुपाद ने स्थापित किया विदेशी लोगों ने भी अपना घर छोड़ा, अपना धर्म छोड़ा, अपना पहरावा छोड़ा, अपना खान पान छोड़ा, और हमारे यहां देखिए अभी ब्रह्मचारी है कितने लोग हैं, उन्होंने भी तो घर छोड़कर, ब्रह्मचारी घर छोड़कर आए, किस लिए, क्योंकि वातावरण अनुकूल है, मंदिर के अंदर जो है वो वातावरण अनुकूल है, कृष्ण भक्ति आराम से हो सकती है, केवल इसलिए। और कभी हमारे घर का, और ये इस हमारे जो ये जो दूसरा अध्याय है राजा पुरंजन की जो 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 कथा है ये, और इसी तरह घर में वातावरण अनुकूल हो भक्ति करने के लिए तो भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले मुसलमान राजा लोग चांद काजी हरिनाम करते थे तो वहां पर उनके मरनंग तोड़ते थे, बोलते ये काफिर लोग हैं इनको मार दो। मगर भक्तों ने कितना कष्ट सहा, आप चैतन्य चैतन्यता पढ़िए, हरिदास ठाकुर जी ने 22 मार्केट प्लेस, 22 जगह पर, 22 जगह पर अलग अलग बाजारों में उसको पीटा गया। किस लिए? क्योंकि एक ही काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए कि उन्होंने कष्ट सहा मगर भक्ति कर रहे थे, मगर उसके बाद भी यहां पर जब उन्होंने स्थापित मंदिर भी स्थापित कर दिए, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जिबुअल बरदस रघुनाथ, उन्होंने आकर यहां पर हमारे सप्त देवालय राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा रमण, राधा गोकुलनंद, राधा श्याम सुंदर और राधा दामोदर, ये सप्त देवालय हैं, ये मंदिर हैं, सात प्रमुख मंदिर हैं वृंदावन के। अब मंदिर स्थापित हुए, उसके बाद यवन लोग आए, मंदिर को तोड़ने की चेष्टा की। कहा जाता कि जब राधा मदन मोहन जी का मंदिर तोड़ रहे थे, जब वो जो यवन लोग या राधा गोविंद जी का मंदिर तोड़ रहे थे, तो वहां पर हनुमान जी ने फिर वहां पर दहाड़ लगाई। सिंहपुर हनुमान, कितने दर्शन किए सिंहपुर हनुमान जी के, है ना, मंदिर है ना राधा गोविंद जी के साथ में। अब भक्त लोगों ने भक्ति के लिए कितने कष्ट सहे हैं, और आपकी जो परिस्थिति हम देखें, कभी छोटी छोटी बातें हैं, कभी संस्था में है, किसी ने कुछ बोल दिया, ये चीजों को ध्यान नहीं देने का है। तस्मा देखे ना भगवान सात्वताम पति श्रुतव्य की तितव्य देश नित्य पूजदा, तस्मा देखे ना मनसा, हमको केवल एक सिंगल पॉइंटेड ये देखना है कि हमको कृष्ण के चरण कैसे प्राप्त करने हैं। इधर उधर क्या होता है उसकी तरफ आप मत ध्यान करिए, क्योंकि उसमें ध्यान दे दिया तो हमारा जो समय क्या होगा, समय व्यर्थ चला जाएगा, और जीवन मृत्यु तो बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी आ जाएगी, और मृत्यु आ गई और इधर देखा उधर देखा। बोलते हैं एक कहावत है, जब हाथी चलता है तो कोई 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 क्या बोलते हैं उसको, सुना है ना आपने कहावत, हा? क्या वो कोई कुत्ता भौंकता ऐसा बोलते हैं ना वो, यहां कोई कोई आदमी जा रहा है तो कोई पत्थर फेंकता है, छोटे मोटे कंकर फेंकता है किसी के ऊपर, कोई मान लो कोई 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 आदमी कोई पुरुष मशहूर हो जाता है थोड़ा सा, तो वो फेंकता है उसके ऊपर, तो कभी वो एक एक को ध्यान देने लग जाएगा तो भैया आप रास्ता नहीं ले सकोगे, आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकोगे। जो निष्कर्ष है हमारे शास्त्रों का वो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम निष्कर्ष है। रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने जब वार्तालाप हुआ तो उसमें क्या था निष्कर्ष निकाला, क्या है निष्कर्ष, जो है वो है कृष्ण प्रेम, और वो प्रेम जो इतनी जल्दी किसी को मिलता नहीं है। अब हमको अवसर है हमारे पास उसको प्राप्ति करने का, अब उसको हम अवसर को हम खोएंगे ये छोटी छोटी चीजों के लिए तो हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, जीवन फिर हमको दोबारा फिर जन्म लेना पड़ जाएगा, भक्ति तो नष्ट नहीं होगी। भक्ति नष्ट कभी नहीं होती, नेहा विक्रम नाशो सीपत्वायो न विद्यते, भक्ति नष्ट नहीं होगी, जहां तक ली है वहां तक रहेगी, मगर गंतव्य तक पहुंचने के लिए कृष्ण के प्रेम के प्राप्ति करने के लिए फिर संकट में पड़ेंगे, फिर सीखेंगे श्लोक, फिर पढ़ेंगे, फिर क्या, भक्ति तो है ही है, परंतु जो जिसको हम ये जीवन में पा सकते हैं जिस वस्तु को, उस वस्तु के लिए हम अपना टाइम वेस्ट मत करें। आप कभी आसाम, पता नहीं आपने देखा होगा, यहां कभी कभी आपने फिल्म में डॉक्यूमेंट्रीज में आपने एक बात देखी होगी कि असम में चाय की पत्तियां, चाय उगती है वहां पर, तो वो जो चाय को चयन करने वाले होती हैं औरतें, वो क्या करती हैं कि पीछे एक बास्केट, पीछे एक टोकरी लटका लेती हैं, वो लंबी सी टोकरी होती है, पता है ना आपको, तो लंबी सी टोकरी होती है तो क्या करती हैं वो, चयन करती हैं चाय के पत्तियां, पत्तियां तोड़ती हैं केवल उसमें, वो हाथ से तोड़नी पड़ती हैं, मशीन से नहीं टूटती वो, तो वो पत्ती को ऐसे ऐसे तोड़ के ऐसे ऐसे फेंकते हैं, पत्ती उठाई फेंकी, पत्ती उठाई फेंकी, पत्ती उठाई फेंकी। अब टोकरी में क्या जाएगा, जब सारा दिन काम कर लिया, जब घर पे आई वो चैन, जिसने वो चाय लेके आई है, तो क्या मिलेगा उसको, टोकरी जब उल्टाएगी तो क्या निकलेगा उसमें, जैसी जैसी पत्ती डाली वैसी वैसी पत्ती निकलेगी। तो जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो उस मनुष्य के जन्म में जैसे जैसे पत्ती आप डाल देंगे, जैसे जैसे कर्म करते, जब उल्टेगा मृत्यु के समय, वो जो हमारा टोकरी जब उल्टेगी मृत्यु के समय, तब पता लग जाएगा अभी क्या क्या कर्म डाला है उसके अंदर, अच्छा डाला कि बुरा डाला। और भक्ति के अंदर जब हम जा रहे हैं, अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, तो भक्ति के कारण भी जब भी भले वो घर गृहस्थ आश्रम में रह रहा है या मंदिर में रह रहा है, ग्रह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको, भक्तिनो ठाकुर कहती है, कहीं भी रह रहा है, मगर चयन किस चीज किस वस्तु का करना है कि केवल कृष्ण का चयन करते जाएं, कृष्ण 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 अपनी टोकरी में डालते जाएं, तो जब हमारी मृत्यु आएगी तो हमारी टोकरी में हमारे बैग में क्या होगा, केवल कृष्ण मात्र ही होंगे और कुछ नहीं होगा। एक वेश्या थी, अब सामने ब्राह्मण बैठा था, घर में बैठता था, रोज वैश्या के नदी थी, ब्राह्मण जाए स्नान करे वहां पर बैठकर शास्त्र पढ़े, और वैश्या ये सोचकर रोज ये सोचती थी, देखो मैं कितनी दुर्भाग्य में, और उसको विवशता थी, विवशता थी, ना वो छोड़ सके ना वो कुछ कर सके, तो बस यही सोचती थी, देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे को ये वैश्यावृत्ति करनी पड़ रही है, काश मेरा भी ऐसा जीवन होता कि मैं भी इस ब्राह्मण की तरह पाठ पूजा कर सकती। 24 घंटे उसका केवल यही चिंतन था कि कभी मैं भी विष्णु की पूजा कर सकती, मगर वो काम तो उसने वो किए, मगर उसका जो मन था, उसकी चेतना थी, वो केवल विष्णु में लगी रहती थी। तो बाद में उसको प्राप्ति क्या हुआ, विष्णु प्राप्ति। ये जो सब ये जीवन जो है हमारा, प्रभुपाद जी धर्मस्य अपवर्गस्य धर्म ही अपवर्गस्य, पवर्ग नहीं, व्याकरण है ना, हिंदी के व्याकरण पढ़ते हैं और कैसे होता है, प फ ब प म, ये हिंदी की व्याकरण में है, इसको पवर्ग कहते हैं, प फ ब प म, मगर भागवत के पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में धर्मो ही अपवर्गस्य, पवर्ग नहीं अपवर्गस्य, अपवर्गस्य क्यों बोला, क्योंकि पवर्ग में क्या होता है, प प कहते हैं परिश्रम को, सारा जीवन परिश्रम किया, मेहनत करिया, किया किया, प फ जब परिश्रम करता है, जैसे घोड़ा है, घोड़ा चलता है, प्रभुपाद जी ने इसके लिए बहुत बड़ी व्याख्या दिया इस पवर्ग अपवर्गस्य श्लोक के ऊपर, प्रभुपाद जी बतलाते हैं, या प्रभुपाद ने एग्जाम्पल समझाई है पवर्ग और अपवर्ग की। पवर्ग की जब प्रभुपाद जी ने कैसे व्याख्या दी कि प परिश्रम मेहनत, घोड़ा है दौड़ता है सारा दिन, दौड़ता है परिश्रम करता है, दौड़ते दौड़ते क्या होता है, उसके मुंह से क्या निकलता है, फेन, फ प फ ब व्यर्थ, मेहनत की फेन निकली मगर व्यर्थ चला गया, वेस्ट, और बाद में क्या होता है, ब भय, और भय इसी में जीवन नष्ट होकर बाद में म मृत्यु, और मृत्यु को प्राप्त कर जाता व्यक्ति। सो ये जो बहुत प्रसिद्धि अच्छी है कि वृंदावन में यहां पर अभी कोई इतना संकट नहीं है, आपको कोई 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 आकर वृंदावन को अटैक नहीं कर रहा। वृंदावन में अभी नहाने के लिए, पुराने जमाने में नदी पे नहाने के जाए, कुएं से पानी निकाले, यहां पर आप जाते हैं घर के अंदर वही कमरे के साथ ही बाथरूम, अटैच बाथरूम होता है, उसको ऐसा खोलता है गर्म पानी निकलता है, नहाते हो। अरे कितना कितना भगवान ने व्यवस्था कर दी हम लोगों के लिए। हवा है, पंखे चल रहे हैं, एसी लगे आजकल, पुराने जमाने में कहां पंखे होते थे। सनातन गोस्वामी वहां पर मानसी गंगा पर जब भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होता है मच्छर है वहां पर। अरे भाई सनातन गोस्वामी भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, और मच्छर कट रहे हैं, भजन में विघ्न आ रहा है। अरे भैया भजन में मेरी को लीला स्मरण में समस्या है, चलो ये जगह छोड़ देते। तभी शंकर जी आ गए सामने ब्राह्मण के रूप में, अरे महाराज आप कहां जा रहे हो। अरे भाई यहां पर कृष्ण का भजन में मेरे को थोड़ा सा विघ्न चल रहा है, कहीं और जा। अरे महाराज आप यहां पर बैठिए, आज के बाद मच्छर नहीं आएगा यहां पर, आप भजन कीजिए आनंद से। और आजकल कितनी कितनी व्यवस्थाएं भगवान ने दे दी है, हमारा भाग्य है। वृंदावन का वास, भक्तों का संग, ये संग जैसे मैं कई बार एक और एग्जांपल देता हूं कि जैसे होली के दिन होते हैं ना, जब जबी गौर पूर्णिमा आती है तो रंग चढ़ जाते हैं, अलग अलग रंग आप जाते हैं, नहीं भी खेलना है। अब तो बच्चे तो बहुत खेली है, जब व्यक्ति बुढ़ापे में जाना शुरू हो जाता है, जब हो जाता है तो फिर बोलता है क्या खेलना है ना, किसी का खेलने को दिल नहीं करता। और बचपन में खेलते थे, अभी अलग अलग रंग चढ़ जाते हैं तो जब निकालते हैं तो क्या करता है, खूब मलना पड़ता है, खूब रगड़ना पड़ता है। तो माँ बोलती थी, हमारी माता जी बोलते थे, अरे बेटा साबुन से नहाओ, साबुन लगाओ और साबुन लगाओ। अब साबुन और पानी दोनों लगाना पड़ता है, अकेला पानी लगा तो निकलता नहीं है। तो महामंत्र का जप जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जल की तरह है मगर साबुन भक्त साबुन की तरह है, भक्त के संग में लगाओ इसको। आप सुबह देखिए जब करिए, इकट्ठे भक्त बैठे हैं मंदिर में, सब बैठे हैं, तो जब ध्वनि होती है ना, जो ध्वनि है खुद का, तो हम अपना जब सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मगर जब भक्त के संग में जब करते हैं तो आनंद आता है। आता क्या नहीं आता बताइए, मेरे हाथ उठा के बताइए कितने को आनंद आता, आनंद आता है ना, वो एक आनंद है उसके अंदर। ये है भक्तों का संग, भक्तों के संग में रहकर, वृंदावन धाम में रहकर प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ें, हरि नाम करें जितना भी है। प्रभुपाद जी ने 16 माला तो किया है भाई, चलो कर लो, ये तो कम से कम किया है। मंदिर में सेवा है, कई भक्त देखता हूं जितना भी मैक्सिमम, कभी आपको 1,00,000 नाम ले सकते हैं तो जरूर लीजिए, क्योंकि ये अवसर है, यही काम है वृंदावन में, और कोई काम नहीं है। वृंदावन का काम है केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा निवेदन है आपसे कि प्रभुपाद जी के आभारी रहकर और उनका पुस्तकों का अध्ययन करें, अध्ययन करने के साथ जो भी कुछ योगदान कर सकते हैं कि इसका पुस्तक का वितरण करने का, किसी को संदेश किसी तरह, किसी को भी कैसे भी अपना योगदान जो है वो प्रभुपाद जी के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति जरूर कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो, या मेरा ख्याल 9 बज गए हैं, तो किसी को कोई टिप्पणी या प्रश्न तो नहीं है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गोप्रेमानंदे।